Baby, you see the end of the moon. पतितानां पावन वैष्णवाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनं मे गौर हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत सप्त कंचन गौरंगी राधे हा देवी काकू हर भगदयाच जाति निपत्त भूमि दंडारती अशातमबुदस्य जनस्य मंदे कुंजाकुतरोच संविदतमपट्टंबर सेन्दारण्य निवासी नृदय शामोदर राधास्कंद निवेशिजल कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजगभक्ति पान्यन्मानमभेक्षणं कृपां बुधिर्जा परदुःखदुःखे सनातनस्तं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति यं प्रकृतिमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो सर्वभूत बतला रहे हैं कि जैसे भगवान के अवतार होते हैं और भगवान एक होने पर भी ये काहे को लेकर के आते हैं सब, बिना लड़कियों को लिए हुए इन लोग का मन ही नहीं भरेगा, छोटी छोटी बच्चों को जैसे भगवान एक होने पर भी उनके विविध अवतार होते हैं, ऐसे ही पराशर शक्ति विविध एक ही भगवान है, ये उनकी शक्ति भी एक है, वो पराशक्ति किंतु विविध श्रीयते। जैसे जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे उनकी शक्ति का भी अवतार है। अब जैसे वो कार्य करती हैं ऐसे ही उनका नाम भी होता है, अलग अलग नाम होता है। अरे चुप कराओ उसे, चुप। कल उन्होंने बताया था कि एक ही शक्ति बैकुंठ में, द्वारकापुरी में, देवताओं के पास में, भगवान के अवतारों के पास में, वो विविध रूप में। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है कि जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की भी कृपा को भक्त लोग नहीं चाहते। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि भगवान की जो नारायण है पर उनकी तो महालक्ष्मी जी है और वो चंचला नहीं अचला है, अचल रूप में उनकी सेवा कर, किंतु समुद्र से जो समुद्र मंथन के बाद में लक्ष्मी जी पैदा हुई और उन्होंने विष्णु का वर्ण किया, वो पति खोज रही थी और किसी भी देवता को उन्होंने वर्णन नहीं किया, नारायण को ही वर्ण जयमाला दे दी। तो ये लक्ष्मी चंचला है, पीछे से लक्ष्मी इनका परिणय उनसे हुआ है, नारायण से उनका परिणय हुआ है। ये लक्ष्मी जी धन इत्यादि की अधिष्ठात्री देवता है, भक्त लोग इनको ही नहीं चाहते, ये यदि उनकी कुछ सेवा भी करनी चाहती हैं, इनकी इच्छाओं को पूर्ण भी करना चाहती हैं, तो ये लोग उनको प्रणाम करके और ऐसी लक्ष्मी से ही पुराने भक्तों की तो बात ही क्या है। नवीन यदि कोई भक्त है तो भी भगवान का अत्यंत, वहां पर उद्धव के लिए भगवान ने जो कहा है, हे उद्धव आत्मजोनी ब्रह्मा और हमारे अभिन्न प्रिय के रूप में जो शंकर लक्ष्मी और दूसरे हमारा शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम हमारे अत्यंत अधिक प्रिय। तो यहाँ इस लक्ष्मी जी के ही संबंध में कहा गया, उस नित्य रूप में जो नारायण के पास में रह करके सेवा करती है, वो यदि सुन ले इस विषय बात को तो वो क्या करेंगी, बिगड़ जाएंगी। इसलिए उनके संबंध में इसको मत लो, इस लक्ष्मी जी के संबंध में। अथवा भृगु कन्या, जो भृगु की कन्या के रूप में प्रकट होकर के विष्णु का वर्ण किया था, उनके लिए कहा जा सकता है। इसलिए कहाँ पर किसके लिए शास्त्रों में क्या बात कही गई है वो तो विज्ञ जो वैष्णव लोग हैं, जो गुरु परंपरा से इसको श्रवण किए हैं, वो लोग समझेंगे। नहीं तो जहां तहां इसको मत लगा देना, नहीं तो ये हो जाएगा कि लक्ष्मी राधिका जी का भी नाम है, तो राधिका जी से भी वो भक्त जो है वो बड़ा हो जाएगा, उनसे भी उद्धव बड़े हो जाएंगे। जो उद्धव चाहते हैं कि हम गोपियों की चरण रमु हम अपने सिर पर लेना चाहते हैं, तो सर्व लक्ष्मी मई तो राधिका जी नहीं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कौन से लक्ष्मी के संबंध में कहाँ कौन सी बात कही गई है उसको विचार करना पड़ता है। इसलिए हम अपने सिद्धांत को ठीक रखने की कोशिश करते, ये रहेगा वैष्णव के संग में ही ये सिद्धांत होते हैं उन पर दोष, नहीं तो जहाँ तहाँ लगा देने से अनर्थ हो जाएगा। तो जो अणिमा इत्यादि सिद्धि को देने वाली, ब्रह्मा इत्यादि को संपत्ति देने वाली, और देवताओं को ऐश्वर्य इत्यादि देने वाली लक्ष्मी जो निकली हैं समुद्र के मंथन से, उन्हीं के संबंध में इसको समझा जाए। और उनसे ही नवीन पुराने भक्तों की तो बात क्या, नवीन भक्तों की, किंतु जो सब समय भगवान में के अंक शायनी और उनके सब समय चरण दबा करके सेवा करने वाली जो लक्ष्मी हैं, जो स्थिर हैं चंचला नहीं, उनके लिए ऐसा मत समझना। इसलिए ऐश्वर्य प्रदा देवी को ही मुमुक्षु मुक्त भक्त बन प्रत्याग, भक्तों की तो बात क्या, जो मुमुक्षु हैं मुक्ति की इच्छा करने वाले, और जो मुक्त हैं और भक्त लोग, ये तीनों प्रकार के लोग ऐसे संपदा वाली धनदात्री देवी का को आदर नहीं करते। जो महालक्ष्मी है, जो भगवत प्रिया है, धरित्री देवी, भू देवी, नीला देवी ना,
भू और लीला,
ये इनके संबंध में वो चीज नहीं कही गई, कोई भी भक्त इनकी उपेक्षा नहीं करेगा, तब हाँ उपेक्षा तो नहीं करेगा, किंतु जो समस्त अवतारावली के बीज हैं स्वयं कृष्ण, और उनकी जो प्रिया श्रीमती राधिका, उन्हीं की कृपा कटाक्ष कोई यदि चाहता हो तो इनको आदर करते हुए भी इनकी कृपा की भीख नहीं मांगेगा, वो तो वहीं पर मांगेगा, तो इसको अनादर न समझा जाए। वैष्णव मात्र की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि कृष्ण का एक अनिष्ट रसिक तत्वज्ञ यदि कोई वैष्णव हो तो उसका आदर करना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है और बाकी का अनादर कर दिया, वो अनादर नहीं तो अपराध हो जाएगा, उनके चरण में भी अपराध नहीं होना चाहिए, किंतु हृदय के साथ में सेवा करेगा उसी भक्त का जो कृष्ण का एकांतिक रसिक और तत्वज्ञ वैष्णव है। मान लिया कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी बहुत से सैकड़ों भक्त हैं, उत्सव कोई हो रहा है, तो उसमें कोई एक ऐसा अनन्य रागानुगा और उसमें भी रूपानुगा कोई वैष्णव हो तो उसको हम आदर अधिक देते हैं, किंतु चतुराई के साथ में देना होगा, जिससे कि साधारण लोग हैं मध्यमाधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी यह न समझे कि हमारी उपेक्षा हो रही है। इस प्रकार से चतुराई ये जन कृष्ण भजे से बहुत चतुर, वो यथा योग्य सम्मान देता है जीवों को, यथा योग्य सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान, इसलिए यथा योग्य सम्मान देना, किंतु क्रमशः बहुत अधिक देगा, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है कृष्ण की जस्य तंग मनसा द्रियत दीक्षात्येत प्रणति भजन तमीशम सुश्रूष्या भजन विज्ञमन निंदा आदि शून्य ऐसे वैष्णव का प्रतिपूर्वक सेवा करना चाहिए, जो अनन्य होकर के निंदा इत्यादि कहीं भी नहीं करते, प्राप्त सुख या दुख जो कुछ है बस उसी में संतुष्ट रह करके एकांतिक रूप में उज्ज्वल रस से उनकी सेवा करते, इनके प्रति विशेष भावना के साथ, किंतु किसी का निरादर न हो। एक निरादर होता है, एक अनादर होता है और एक अवज्ञा होती है और किसी की निंदा इत्यादि की जाती है, तो इन सब से बच करके उनके प्रति यथा योग्य श्रद्धा ज्ञापन करते हुए रसिक और उन्नत वैष्णवों के साथ में अपना प्रेममयी सेवा करते हैं। इसी रूप से महालक्ष्मी जिस प्रकार से भगवत प्रिया है, धरणी भी उसी प्रकार से भगवत प्रिया है। जोग माया काफी बहुत सा रूप है, दुर्गा इत्यादि के भी बहुत से रूप हैं, इनकी भी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तुच्छताच्छल्य नहीं करना चाहिए, यथा जो कि उनको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि ये भगवत शक्ति है, किंतु उनसे हमारा कोई गहरा भाव नहीं, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, उनको हम हाँ लेना कुछ ये है कि आप हमारे ऊपर में कृपा करते रहिए कि विषयों में हमको मत फंसाइए, बस इतना नहीं तो विषयों में फंसा देंगे, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करना है। और हमारा गोपियों के प्रति अनुगतमय भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवत शक्ति कहीं पर महाविभूति, कहीं योग शब्द से, कहीं पर योग माया शब्द से इनका अभिधान हुआ करता है, कहीं कहीं मैंने उनको योग माया, आत्म माया, गीता में आत्म माया संभवामी आत्म माया माने क्या, जो अपने स्वरूप में भगवान की प्रकृति अर्थात स्वाभाविक जो शक्ति है वो आत्ममाया है, ये आत्ममाया है। ये भी आत्ममाया कहाँ से आई, इनका रूप क्या है, वही श्रीमती राधिका जी ही है, उन्हीं से ही आत्मा, इच्छा शक्ति भी राधिका जी ही है। जिस शक्ति के द्वारा माध्यम से सच्चिदानंद भगवान के विलास इत्यादि होते हैं, वो जो शक्ति है योग माया, वो नित्य है, सत्य है, अनादि और अनंत। कृष्ण के साथ में जन्म लिया, फिर अनादि कैसे रह गए, अपने जन्म के पहले ही बलदेव जी को आकर्षण करके सप्तम गर्भ को यहाँ रख दिया और अपने आप आई कृष्ण के साथ में आठवें उनके यशोदा जी के गर्भ में आई, पीछे से उन्होंने जन्म दिया। तो अपने जन्म के पहले ही वो क्रिया करते हैं, वो नित्य हैं, सनातनी हैं। यही जो योग माया है भजनानंद को बढ़ाने वाली है, यही योग माया भगवान की जो हलादिनी शक्ति है और हलादिनी और संबित उन दोनों को एक कर उसके सार को लेकर श्रद्धा से लेकर भाव कर और फिर प्रेम से लेकर के महाभाव तक ये बढ़ाने वाली, भक्तों को दे करके ये अपना दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करके ये इतनी सब चीज़ों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते, उसी की आप योग जोगमाया कहो और फिर वही पूर्णिमा के रूप में जो गोपी गर्भ जाप, जो गोपियां साधन सिद्धा जो वहां पर उत्पन्न हुई उनको मिलाती थी, नंदगांव में अपना डेरा बनाती थी, संदीपनी मुनि के मैया के रूप में वहां पर आती, वही योग माया, वही पौर्णमासी। और विचित्र प्रकार के रसों को उत्पन्न कर, यशोदा जी के यहाँ जब जाएंगी तो बासल रस को बढ़ाएंगी, सखाओं के पास में जाएंगी तो उनके सख्त रस को बढ़ा देंगे, जब दासों के पास में जाएंगी तो दास भाव को बढ़ाएंगी, सब रसों को वो बढ़ाती हैं और जीवों का प्रतिपालन पोषण करती हैं। वही वो खजनानंद वैचित्र की जननी है, अर्थात माँ है। यदि उनका आश्रय नहीं लिया जाए तो भक्ति वृत्ति नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि वही शक्ति भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का कारण है, वही योग माया। भगवान की आकृति वेशभूषा लीला इत्यादि की समाधान करने वाली है। जिस समय में कृष्ण ने बंसी बजाई उस समय गोपियां विभ्रम के रूप में जिन अलंकारों को जहां नहीं धारण करना चाहिए उस घर में धारण कर दिया, जहां अंजन नहीं करना चाहिए वहां अंजन लगा दिया, उल्टा पुल्टा बन करके वहां पर, ये जो चीज है किसने कराया? और अनुचित स्थानों पर अनुचित अलंकारों को धारण करके उचित स्थानों पर अलंकार जो धारण किए जाते हैं उससे कोटि गुण अधिक सौंदर्य बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये योग माया का काम। तो नहा जहां पर नहीं धारण करना चाहिए, मान लिया कि गले में नूपुर पहन करके कोई गोपी चली गई और हार को पैर में लगा दिया या कमर में बांध, और जब कृष्ण के पास में गई होगी तो कृष्ण ने देखा होगा तो पूछा जी ने, भाई ये तो अलंकार बड़ा सुंदर था, तुमने किया तो बतलाओ तो उसका कैसे कितना मूल्य अधिक हुआ। ये योग माया का कारण। प्रेम में कोई ऐसे विशुद्ध हो जाता है, ये चीज वहां पर देख लाया था, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं इस योग माया के वशीभूत। तो और लोग ऐसी योग माया का कौन नहीं आराधना करेगा? जो जानेगा सो आराधना करेगा, और जो नहीं जानेगा वो अपने बल पर दो चार बार हरे कृष्ण फेर लेगा और बैठ जाएगा, अपना इधर उधर खाना पीना इसमें सब लग जाएगा, संसारी काम है। यही विलास दुर्वितर्क है, इसी योग माया के द्वारा कृष्ण का रिंगन कार्य, मुग्धता, यशोदा जी की मुग्धता, और जो कुछ है सब कुछ लीला वैचित्री प्रारंभ से भगवान पर और भक्तों पर दिया करते, और अपने एक दूसरे रूप से जिसको महामाया भी कहते हैं उसके द्वारा असुरों पर कार्य करते और बद्ध जीवों पर कार्य करते। जब तक वसुदेव जी के पास में वो लड़की आई योग माया, जैसे कृष्ण को इधर से ले गए थे उधर, उधर से उसको योग माया को ला रहे हैं यशोदा जी के पलंग से, जब तक इनके पास रही तब तक तो योग माया रही, और ज्यों ही कंस के कारागार में पहुंची और कंस ने उसे मारने के लिए उठाया, बस उसका महामाया का कार्य आरंभ हो गया और योग माया अपना अलक्षित रूप में अपना कार्य करने लगी, इसको छाया रूप में बदल दिया। कब उससे निकल गई वो किसी को पता ही नहीं लगा। ऐसे देखने में मालूम पड़ता है ये दोनों एक ही हैं, किंतु दोनों एक नहीं। अरे उसी को तो लाए, उसी को जेलखाना में रखा, उसी को कंस ने पकड़ा और वही अष्टभुजा दुर्गा हो गई। और कंस को लाठी ऐसे जोर से लात मारा, वो थिमिलिया खा गया। अरे ये तो मेरी साक्षात आराध्या देवी, कब उसमें से कैसे क्या किया, अचिंत शक्ति कब उसमें से निकल गई, कब क्या हुआ, कब आए, ये जीव के तर्क के अधीन नहीं। जिसको जितनी श्रद्धा होगी और श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को पढ़ेगा सुनेगा वो उतना ही इसकी धारणा करेगा, अथवा फिर अधिक जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा मान लेगा, तर्क वितर्क नहीं करेगा। जगत के लोग तर्क वितर्क करेंगे, अरे वही तो यशोदा जी के गर्भ से निकली और वही यहाँ आई, वहां पर आत्ममाया योग माया और यहाँ पर हो गई महामाया, ये कैसे हुआ, तो उनको कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा। इसलिए जब तक के किसी के हृदय में वैसी श्रद्धा न हो तब तक प्राकृतिक बुद्धि संपन्न लोगों को ये चीजें, इसलिए न कर्म बुद्धि जनयेत कर्म संगीना न वेद बुद्धि, उनको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे तो उनकी बुद्धि में भ्रम हो जाए और कर्म भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जी बीस पी सकते हैं और हम भी देखा देखी पी लें, उत्साह थोड़ा सा देखने के साथ में हो गया तो क्या होगा, मरेंगे। मीराबाई ने भी तो सर हाथ में लिया तो वो बन गया शालक राम, और विष लिया तो वो अमृत बन गया। हम भी कुछ हरि नाम करते हैं तो हम भी वैसा करें। वैसे ही हम किसी की नकल करने जाएंगे, सब लड़कियां ये सोचें हम विवाह नहीं करेंगे, घर नहीं करेंगे, और हम ऐसे ही भगवान का भजन करेंगे। लड़के भी ऐसा सोचें कि हम लोग भाई विवाह विवाह नहीं करेंगे और ऐसा भजन करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी को भी हरा देंगे। लड़कियां सोचे जो हम गंगा माता जी को हरा दें, वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे वो तो 24 घंटा में 23 घंटा भजन करती थी, तू कितनी करती है। मैंने तो राज्य पाठ छोड़ करके समस्त सुखों को छोड़कर कैसे वृंदावन में आ गई, कितने दूरी पर चल करके, अब कैसा त्याग, महान त्याग, कहाँ उनमें कैसी शक्ति और कहाँ हम अभी। इसलिए नकल मत करो, अनुगत्य में अनुसरण करो है? अनुसरण करने में ठीक है, हम किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, अनुसरण करेंगे। इसलिए शिव जी का या गोपियों का या और किसी का हम अनुकरण नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति विचार अनुगत्य इत्यादि के साथ, इसलिए अनुकरण मत करना चाहिए। तो योग माया और महामाया के संबंध में बतला रहा था, प्राकृत बुद्धि का काम नहीं है उस चीज को निर्णय कर सकते। इसीलिए यदि कोई अनुकरण करते हैं ना क्षणिक आवेग में आवेश में, जो लोग घर छोड़ देते हैं ना, घर छोड़ दिया और स्त्री भी छोड़ दिया, फिर कुछ दिन आने के बाद में फिर कहीं नजर चलने लगती है और वैभव के प्रति आकांक्षा होने लगती है, अच्छे पहनेंगे अच्छे खाएंगे, क्या ये यहाँ का भंडारी कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, रोज लफड़ा करता है एक ही, हम लोग भी तो घर छोड़ करके आए हैं, कभी अच्छा चीज कभी बनना चाहिए। रघुनाथ दास का चरित्र देखो, जो ऐसा सनातन गोस्वामी का चरित्र देखो, जो ऐसा। इसलिए अनुकरण हम नहीं करने जाए, सब समय अपने अधिकार के अनुसार में अनुसरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान उन पर दया करते हैं जो निष्कपट होकर के भजन करता है। इसलिए वो जो शक्ति है भगवान की नित्या सत्या अनादि अनंता अनर्वचनीय, वचन के द्वारा भी जिनका व्यक्त जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दुर्वितर्क तर्क की परिधि से अतीत है। ये इनका स्वरूप कोई निरूपण करने में साधारण आदमी नहीं समझ सकते, केवल उस उच्च कोटि के यदि कोई हो अनुभवी मुक्त महापुरुष तो कुछ कुछ वो कह सकते हैं मात्र, अन्यथा वो निरूपण नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लाख बार पढ़ चुके हैं, दूसरों को बार बार उपदेश दें, किंतु यदि कार्य कुछ पड़ जाएगा ना, एक सेकंड में भूल जाएंगे ये शरीर हम नहीं हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा तो सब धरा का तरा रह जाएगा। जैसे नारद जी जैसे मुक्त पुरुष थे, वो रामायण के रामचंद्र जी के आने के कारण थे, एक सेकंड नहीं लगा और कैसे माया ने उनको नचा दिया। ऐसे ही एक पैसे का स्वार्थ भी हमें लेकर के डुबा सकता है, केवल भजन बल कुछ रख सकता है, किंतु उस पर भी हम लोगों को रह करके खूब दीनहीन होकर के अपना साधन भजन करना चाहिए। इस योग माया के प्रभाव से ही ये योग माया शक्ति संचरित करती है जीवों के हृदय में, श्रवण कीर्तन इत्यादि रूपा भक्ति का आविर्भाव होता है जीवों के हृदय में। ये योग माया ही योग करा देती है किससे, लागिनी शक्ति और संबित शक्ति के साथ जीवों के हृदय में यही उदित कराती है। इसी को विशुद्ध सत्व कहते हैं, ये योग माया का ही कार्य। और भगवान की सेवा में विविध प्रकार की सेवा में वैकुंठ से लेकर के द्वारका तक और द्वारका से लेकर के मथुरा, मथुरा से वृंदावन, जितनी प्रकार की सेवाएं हैं इसमें जीवों को लगाती हैं जो योग माया है। भक्ति का जो भेद होता है और रस का जो भेद होता है, भक्ति का भेद क्या है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, और उसमें भी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, और फिर भाव के बाद में नित्य सिद्ध परिकरों में या साधन सिद्ध परिकरों में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये वेचित्र जो है ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। भक्ति एक है ना, भक्ति दो नहीं है, ये एक भाव है, किंतु ऊपर से ये श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन इत्यादि 64 प्रकारों में 9 प्रकार में 5 प्रकार में 3 प्रकार में और 1 प्रकार में भक्ति की वृद्धि किंतु है एक, रस भी एक ही है, रस अनेक नहीं है, किंतु साधकों के क्षेत्र के अनुसार में यह अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। भावना तो एक ही है, श्रृंगार ही एक पूर्ण रस है, मधुर रस, और वही क्रमशः कम कम प्रकाशित होने पर वात्सल्य सख दास्य और इसके रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे भगवान एक होने पर भी भक्ति के तारतम्य से, ज्ञान के तारतम्य से ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण और इत्यादि सब नाना प्रकार के रूपों में दिख पड़ते हैं। भगवान दो नहीं होते, जैसे एक ही चंद्र एंगल ऑफ विजन के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी के रूप में, चंद्र बदलते नहीं है, एक ही चंद्र, अधिकार देखने का ये बदलता है। इसीलिए कभी अमावस्या की रात्रि और कभी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी हुआ करते, ऐसे ही भगवान एक ही हैं। साधन के तारतम्य से ऐसे दिख पड़ते हैं, ऐसे ये शक्ति भी साधन के तारतम्य से ऐसे ही दिख पड़ते हैं। ये सब जितनी भी विचित्रताएं हैं, ये सब योग माया जी का कार्य। इसलिए योग माया का कितना प्रणाम और ये सब मंत्र है। राथेश केल प्रभुता विनोद विनाश्य विज्ञान प्रजबंधितांगी कृपालुताज्ञा विश्ववतिया श्री पौर्णमाशम शीर्षान श्री पौर्णमाश्याश्चरणारविंदम वंदे भक्ति वितान हेतु श्री कृष्ण लीलाब्धि तरंग भगनम जस्या मनस्तत् निशम। हजारों जगत को प्रणाम। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्द्रदिश्व नंदसुतम
नंदगोपसुतम देवी पतिमे कुरुते नमः।
वो जोग माया का ही है, वहाँ महामाया शब्द होने पर भी महामाया मत लगा लेना, मैं वही है। इसलिए भगवान की लीलाओं के जो वैचित्र हैं वो सब ये जोग माया के ही हैं। यद्यपि उस शक्ति का प्रभाव और चेष्टा अनर्वचनीय, अनर्वचनीय मैंने वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, तभी भगवान के शुद्ध भक्त लोग इसको अवगत होते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। भगवान की महिमा अनर्वचनीय है, कभी भागवत में उसका वर्णन नहीं किया गया किया है। ऐसे ही शक्ति की महिमा भी अनर्वचनीय है, तभी भगवान के शुद्ध भक्त लोग इसे अवगत होकर के इसका वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी, व्यास, पराशर, नारद, इन सब लोगों ने, हमारे रूप सनातन इत्यादि ने, जीव गोस्वामी ने और जितने आचार्य हैं सब लोगों ने इसका वर्णन किया। सब परा अपरायो शक्तियो परा शक्ति निर्भिद्यते प्रभु स्वाभाविक ही साजा ख्याता प्रकृति इत्यादि। वही जो माया शक्ति महामाया जोग माया जो वही परा और अपरा कहला दो रूपों में वो देखी जाती है। एक उनके उनकी छाया का नाम अपरा और उनको जो स्वयं है उनको परा, जो स्वरूप की हैं उनको कहा गया परा और उनकी जो छाया रूपा है उनको कहा गया। छाया माने क्या? जो अंगों से अपृथक रहते हुए भी कार्यतः उस कार्य को नहीं करती हैं उसको कहा गया छाया। छाया माने वहां पर पेड़ की छाया जैसा नहीं, वो तो निष्क्रिय है। हमारी जो छाया होती है वो निष्क्रिय होती है, कभी निष्क्रिय एकदम नहीं रहती। जैसे पेड़ों की छाया में शीतलता तो आती ही है ना, फल उसमें रह जाएंगे। पेड़ में जैसे पत्ते फल होते हैं, लकड़ी होती है, वैसे इसमें तो नहीं होती, किंतु एक तो गुण है, सूर्य के ताप को वो हरण करके उसे शीतल बना देती है। वो छाया छाया में जाने से पैर नहीं जलता है, छाया में चलने से पैर नहीं जलता है। कुछ तो क्रिया जरूर है,